So we welcome you on 23rd May, Wednesday, in PV Doshi Hospital. Why do we call this month as Purushottam Mass? Because this month was created after 32 months and 11 days. Due to the difference between lunar and solar time calculations, there's a difference of 2 hours and few minutes every day between the solar and lunar monthly calculations, time-wise. So when you go on adding those 2 hours for 32 months, it becomes 1 month. We'll not go into technical discussions, but because of this difference, Hindi batao kya? तो पुरुषोत्तम मास तैयार कैसे होता है? क्योंकि चंद्र गणना जो होती है ना, चंद्र की अनुसार और सूर्य के अनुसार, उसमें हर रोज 2 घंटे का डिफरेंस होता है. चंद्र गणना 27 घंटे की होती है, 27 घंटे 11 मिनट, और सूर्य गणना 29 घंटे ऐसे कुछ होता है उसका. नहीं सॉरी, 27 दिन और 11 घंटे चंद्र के अनुसार एक महीना पूरा होता है, 29 दिन 57 कुछ है पॉइंट, उसमें सूर्य के अनुसार एक महीना पूरा होता है. तो चंद्र के अनुसार एक महीना और सूर्य के अनुसार एक महीना, इसके अंदर 2 दिन का फर्क आता है, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 2 दिन का ऐसा कुछ कैलकुलेशन है. एनीवे, वो कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं है. 32 महीने के बाद में एक महीना एक्स्ट्रा आता है उसकी वजह से. तो जब वो एक महीना ऐड करते हैं तो फिर चंद्र और सूर्य गणना सेम हो जाती है, इक्वल. वापस फिर वापस वो चालू होता है, वापस 32 महीने के बाद में वापस वो 30 दिन ऐड करते हैं उसको, सो दैट इट बिकम्स ऑल राइट. तो हर महीने में क्या होता है ना, हर महीने में एक मुहूर्त निकलता है. क्यों निकलता है मुहूर्त? क्योंकि सूर्य हर महीने में एक राशि में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं संक्रांति. मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, और हर महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उस महीने में मुहूर्त निकलते हैं यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, गृह प्रवेश, शादी, मुंज, बहुत सारे जो कार्य करते हैं ना हम लोग, जमीन भूमि पूजन करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, उस सबके लिए मुहूर्त निकलते हैं, और वो पूजा के माध्यम से देवताओं को आहुति मिलती है. लेकिन ये महीने में कोई भी सूर्य किसी भी तिथि में किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए इस महीने में कोई मुहूर्त निकलता नहीं है. इस महीने में कोई भी चीज करने के लिए मुहूर्त निकलता नहीं है, ना विवाह का मुहूर्त निकलता है, ना घर प्रवेश का निकलता है, ना कुछ खरीदी का निकलता है, कुछ नहीं. तो देवताओं ने इस महीने को त्याग कर दिया कि हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं इस महीने में. डेमीगॉड्स रिजेक्टेड. तो वो महीना जो है ना, वो देवी के रूप में था. हर एक महीना एक व्यक्ति है, वो महीने के समय 30 दिन के रूप में हमारी सेवा करता है. इस विश्व में हर एक चीज व्यक्ति है, पहाड़ भी व्यक्ति है, पहाड़ के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं, नदी भी देवी है, प्रवाहित जल के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं. एवरीथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज अ पर्सन. हर एक व्यक्ति, हर एक चीज यहाँ व्यक्ति है. भौतिक दुनिया में हमको वो समझ में नहीं आता, अरे पहाड़ कैसे व्यक्ति है? पर आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि पहाड़ भी चलते हैं, पहाड़ भी जगह बदली कर देते हैं, चेंज हो जाते हैं. नदी अपना प्रवाह बदलते तो सबको मालूम है. आज देखेंगे तो जमुना जी कहाँ बह रही है. तो हर एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति, कुंड भी एक व्यक्ति है, पर्वत भी व्यक्ति है, सरोवर भी व्यक्ति है, समुद्र भी व्यक्ति है. समुद्र देवता का नाम क्या है? वरुण देवता. वो समुद्र की देवता है। तो प्रभु रामचंद्र ने समुद्र को बोला रास्ता दो, तो रास्ता नहीं दिया। तो प्रभु रामचंद्र ने 3 दिन तपस्या किया, फिर भी आंसर नहीं दिया। तो धनुष से उठाया समुद्र को उखेड़ने के लिए, तो समुद्र देवता भाग भाग के आए हाथ जोड़कर कि माफ़ करना, हम आपको रास्ता देंगे। तो ठीक, फिर मैं फिर ब्रिज बना उनके ऊपर। वायु भी देवता है कि नहीं है? वायु भी देवता है, उनके हनुमान जी पुत्र हैं, भीमसेन पुत्र हैं। ऐसे हर एक देवता अलग अलग रूप में आते हैं हमारे साथ। आकाश भी व्यक्ति है, उसकी भी एक देवता है। गांव में भी देवता होता है ना, ग्राम में देवता, वन्य देवता, ये देवता वो देवता, कितने प्रकार के देवता, कुल देवता दिखते नहीं हमको, लेकिन वो अपने अपने सेवा करते रहते हैं अपने अपने एरिया में। तो ये महिना भी एक देवी के रूप में प्रकट था, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। चलो स्वीकार नहीं किया ठीक बात है, लेकिन निंदा भी बहुत किया उसका, इसमें कुछ गुण नहीं है, कुछ मुहूर्त नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, यूजलेस है, ऐसे है वैसे है। तो उसको क्या कहते हैं, कंडेमनेशन, यानी कि जिस निंदा करने के बाद बहुत दुख होता है व्यक्ति को। समझो आप एकदम गरीब हो, कोई आपको पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन रोज आपको आदमी 10 आदमी गाली दे के जाएंगे तो बहुत दुख होता है। तो इस महीने की बहुत निंदा की गई, निर्भत्सना की गई। तो किसी भी देवता ने, किसी भी देवी ने, किसी भी व्यक्ति ने उनको आश्रय नहीं दिया, अपना नहीं बनाया। प्रेम देने के बाद छोड़ दो, लेकिन अपना नहीं बनाया और ठुकरा भी दिया उल्टा। तो उस समय वो देवी जो है वो विष्णु के पास गई और विष्णु के पास अपना दर्द भरा निवेदन दिया उन्होंने कि मैं ऐसा ऐसा मेरे बारे में हो रहा है। तो बहुत शरणागत और बहुत नम्र भाव से वो आई थी विष्णु के पास, दीन होकर आई थी। तो भगवान ने उसको सहारा दिया और भगवान ने कहा आप चिंता मत करना, अगर आपको सब लोग त्याग रहे हैं, कोई अपना ने माने को तैयार नहीं है, मैं आपको अपनाता हूँ, मैं आपका पति बन जाता हूँ। तो मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं आपका मेरा नाम आपको देता हूँ, पुरुषोत्तम मास, और मुझ में जितने गुण है वो सब मैं आपको दे देता हूँ, जितने भी गुण मेरे में है वो मैं आपको अर्पण कर देता हूँ, वो आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा बहुत उनको वरदान वरदान और वरदान दे दिया, वरदानों से भर दिया उनको। और फिर कहा कि आपके इस महीने में चाहे कोई मुहूर्त ना हो, कोई पुण्य कार्य नहीं होगा, लेकिन भक्ति वाला सारा कार्य हो जाएगा इस महीने में। तो आप लोगों को क्या लगता है, पुण्य कार्य भक्ति कार्य में कोई अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है तो क्या है बताइए, और नहीं तो क्यों नहीं है बताइए। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो ए बराबर है तो बी बराबर। पुण्य 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 कुछ पाने के लिए किया जाता है, और दान ए अनंत पुण्यों से एक कार्य है दान। लेकिन नदी में स्नान करना, कोई अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, पुत्र होना चाहिए इसलिए यज्ञ करना, पुत्री होनी चाहिए यज्ञ करना, लड़के का शादी होनी चाहिए यज्ञ करना, विधि करना, या और कोई आप बोलेंगे कबूतर को खाना खिलाएंगे तो बिजनेस में बरकत होती है, और कौवे को खिलाएंगे तो ये होता है, और मछली को डालेंगे गेहूं का आटा, तो ऐसा बहुत सारा लिख के रखा होता है। तो लोग सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। अंधे को दान देंगे तो नेत्रदान से कुछ और लाभ होगा, गौदान का लाभ है, तीर्थ यात्रा करने का लाभ है। तो पुण्य कार्य है ना, उसको एक बेनिफिट मिलता है। हम सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए, अगर आप भक्ति विधान में काम कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि पुण्य में और भक्ति में क्या अंतर है। पुण्य करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन वो अच्छा लाभ जो है ना, उसकी एक शुरुआत होगी, उसका एक अंत होगा। समझो आपने पुण्य कार्य किया, मैंने आपको 1,00,000 रुपया दिया, मतलब उसके फल के रूप में, तो 1,00,000 रुपया आप में आपके आए पास आएगा तो एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, खर्च हो जाएगा ना, वो उसकी एक शुरुआत है और उसका अंत है। 1,00,000 रुपया लेके आप जीवन भर एंजॉय नहीं कर सकते ना, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। कितना भी इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी वो एक दिन उसका मल्टीप्लाई, उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर वो 1 लाख रुपए पर्याप्त होता तो सबको 1 लाख में जिंदगी बन जाती, सबकी खत्म ही नहीं होता है तो क्या है, चिंता ही करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुण्य का ऐसा स्वभाव होता है कि पुण्य के फल की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। दिस इज द बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये आपको समझ में आना चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य को पुण्य के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए, क्योंकि तो जितना भी आप पुण्य कमाओगे ना, उसका एक दिन एंड हो जाएगा। उसका एक श्लोक है गीता में, भागवत में, क्षणे पुण्य मर्त लोके विशंति। अगर आप पुण्य का संचय, साठा, ट्रेजर लेके अगर स्वर्ग में भी आपको जन्म मिला, पुण्य के अनुसार, फल के अनुसार आप स्वर्ग में गए, बहुत सारा वहाँ पर आपको लाखों साल का आपको एन्जॉयमेंट का लाभ मिला, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपके खाते में पुण्य समाप्त हो जाएगा और आपको क्षीणे पुण्य, मतलब पुण्य क्षीण होने के बाद में मर्त्य लोके विशंति, दोबारा पृथ्वी लोक पर आपको मर्त्य लोक में आकर जन्म लेना पड़ेगा। मर्त्य लोक का मतलब क्या है, जहाँ मृत्यु होती है, दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है। पाप का भी ऐसा ही होता है, पाप को भी एक फल मिलता है, सजा मिलती है। समझो आपको जेल में 6 महीना रहना है आपको इस गुने की वजह से। एक दिन शुरू हो जाएगा वो, एक दिन एंड भी हो जाएगा। अब हमारे फिल्म स्टार नहीं आएगा वापस, गन वन रख के घर पे रखा था ना, AK-47, हो गया सजा पूरा, घर पे आ गए अभी। तो पाप का फल भी ऐसा ही होता है, उसकी भी एक शुरुआत होती है, उसका भी एक अंत होता है। तो एक और श्लोक है, उसका मतलब यह है कि आद्यन्तु वन्तु कौन्तेया नते रमतु नतेषु रमते बुधा। इस तरह से जिस चीज की शुरुआत है और जिस चीज का अंत है, चाहे वो अच्छा वाला शुरुआत अंत वाला हो या बुरा वाला शुरुआत अंत हो, ऐसे शुरुआत अंत वाले चीजों में बुद्धिमान व्यक्ति रुचि लेता नहीं है। न तेषु रमते बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है, वो रमता नहीं उसके अंदर। बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या ही वो की गई है, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसका IQ 120 है और उसने PhD किया है, उसको बुद्धिमान नहीं कहते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस दुनिया के, जिसकी शुरुआत है और इसका अंत है, उसमें रुचि लेता नहीं है। तो रुचि किस में लेता है वो, जिसकी शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसे चीजों में वो रुचि लेता है। और भक्ति की व्याख्या क्या है, भक्ति जो है ना वो आत्मा के स्तर पर होती है, उसका लाभ भी आत्मा के स्तर पर होता है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इसको भक्ति कहते हैं। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी को स्पिरिचुअल लाभ मिलता है, वो किसी भी काल गणना में नहीं आता कि आज शुरू हो गया कल अंत हो गया। आप जो भी भक्ति कार्य करेंगे ना, वो आपके अक्षय खाते में जमा हो जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आपने दुनिया में 2 माला भी जप किया है, 2 रोजरी पे जप किया है, 2 तस्बीह पे जप किया है, तो आपके अक्षय खाते में जमा है वो, कभी समाप्त नहीं होगा वो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो और भक्ति जो है ना, बाय व्याख्या, बाय डेफिनेशन, भगवान के संतुष्टि के लिए की जाती है। भक्ति का और कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे हम लोग अभी अधिक मास है और जाके नदी में स्नान कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये भी विचार है, चलो पगार बढ़ेगा, चलो लड़के की शादी हो जाएगी, चलो नए घर में जाएंगे, ऐसा मन में एक बीच में रहता है कि कुछ जमा हो जाएगा, अच्छा काम करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भक्ति में आते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी गरीब है ना, अभी ये करने से ना थोड़ा सा स्थिति अच्छा हो जाएगा, वेल टू डू हो जाएंगे। हमारे भक्ति विधान में जब शुरू किया था हम लोग ने, तो कई लोगों ने जब करना शुरू किया था, मैं उनके साथ उनका पर्सनल ट्रेनिंग लेता था, तो उन्होंने 16 माला भी जप किया, सारे नियम पालन किए, 5-6 साल पालन किया। आप आइए ना मैडम, इधर आइए। 5-6 साल पालन किया और अचानक एक दिन बंद कर दिया, तो मुझे पता चला कैसे भी कि बंद कर दिया उन्होंने। बोला क्या हो गया, बोला क्या फायदा जप करके, ना प्रमोशन हुआ, ना पगार बढ़ा, ना घर का लोन समाप्त हो गया, ना घर की तकलीफ खत्म हो गई, क्या फायदा है जब करके, तो छोड़ दिया उसको। इसका मतलब वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहे थे, स्वार्थी हेतु मन में रखकर कर रहे थे, जिसके लिए वो करना ही नहीं चाहिए, उसके लिए है ही नहीं वो। तो इसको कहते हैं अज्ञान। भक्ति वाला कार्य भी कर रहे हैं लेकिन अज्ञान में ही कर रहे हैं, उनको पता नहीं किसके लिए क्या करना है। अभी अगर आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे और मेडिकल कॉलेज के एग्जाम देने जाएंगे तो आप बोलेंगे इतना पढ़ाई किया मैंने मैथमेटिक्स का, लेकिन मेरे को एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया मुझे, क्योंकि आपने क्या किया है और आप क्या भी कर रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उस तरह से ही है ये। तो फिर उनको समझाया, फिर उनको समझ में आया कि अरे ये सब चीजें उसके लिए नहीं करते हैं। समसिद्धिर हरितोषणम, केवल भगवान के आनंद के लिए ही भक्ति की जाती है। और फिर भगवान देखेंगे आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या छीनना है क्या नहीं छीनना है आपसे। कभी कभी आपका जो बुरा है उसको छीन लेते हैं तो आपको दुख होता है, अरे सब कुछ छीन लिया उन्होंने, लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो छीन लेते हैं, जो आपको अच्छा है थोड़ी देर बाद में देते हैं, जब योग्य समय आएगा तो देते हैं। आप क्या करते हैं अपने बच्चों को, अभी उनको खेलने में चाकू चाहिए, उनको खिलौने में घर घर खेल रहे हैं तो उनको अभी सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए, तो आप देंगे उनको चाकू छोटे छोटे बच्चों को, अरे वो तो काट लेंगे अपने आप को, मस्ती मस्ती में जख्मी कर लेंगे अपने आप को। तो आपको लगेगा कि कितनी माँ दुष्ट है, देखो खेलने में हमको कोई एक सादा चाकू भी देती नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो कब देना है आपको, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप देंगे, बोले ये बेटा सब्जी काट के रखो मैं शाम को आ रही हूँ। तो आप भी जैसे माँ के हिसाब से आपको पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और कभी देना है और कभी देना नहीं है भी आपको मालूम है। अगर हम माँ होते हुए इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का कल्याण का, तो भगवान अपने बालकों का कितना ख्याल रखते होंगे। तो कभी कभी लगता है भगवान कितने दुष्ट है, अरे सब कुछ छीन लिया, ऐसा हुआ भूकंप आया सब नष्ट हो गया। भगवान को एक जगह पर शास्त्र में प्रश्न पूछा गया है, ऐसा आप क्यों करते हो भगवान, अपने भक्तों के जीवन में सब कुछ कभी छीन लेते हो, उनको गरीब भिखारी बना देते हो, क्या बात है। तो कहते हैं तस्याहम अनुगुणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, समझना मुश्किल है ना, लेकिन उत्तर बहुत सुंदर दिया उन्होंने। कहा कि जिस पर मैं प्रेम करता हूँ और जो मुझ पर प्रेम करता है, एक बार ये निश्चित हो गया कि वो मुझ पर सही में प्रेम कर रहा है और मुझे भी उस पर प्रेम होता है उसके प्रेम की वजह से, तो मैं उसके जीवन में जो अशुभ है वो सब धीरे धीरे शनै छीन लेता हूँ। क्यों ऐसा करेंगे, भगवान को शौक है क्या ऐसा खिलौना ये लिया वो छीन लिया वो लिया वो छीन लिया मजा देखने के लिए, भगवान को शौक नहीं है ऐसा। क्योंकि जब दुनियादारी की बहुत सारी वस्तुएं भक्त के पास होती है तो हो सकता है वो उसमें फंसा रहेगा, और जब छीन लेता हूं उन चीजों को तो सब कुछ सहारा निकलने के बाद में मेरे ही सहारे में आएगा, वो मेरा ही सहारा लेगा, और जो मेरा सहारा लेगा तो उसका पूरा कल्याण हो जाएगा, और सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर वो उसमें भी मन लगाएगा मेरे भी मन लगाएगा, पार्टली पार्टली हो जाएगा, 100% नहीं होगा। लेकिन जब बाकी सब कुछ छीन ले जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो फिर वो मेरे ही सहारे में आएगा, 100% सरेंडर में आएगा वो। तो लगता बहुत कष्ट वाला है, अरे बाप रे कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया मेरा, लेकिन उस समय जैसे भी फॉर एग्जाम्पल देव द्रौपदी का एग्जाम्पल है ना, द्रौपदी को आदेश दिया गया जाओ उसको ले आओ वस्त्र उतार के लेके आओ, तो तब तक द्रौपदी को पता था कि मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, इधर बहुत लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, भीष्मदेव बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, और मुझे पता है कर्ण भी बहुत अच्छा आदमी है वो भी बैठा हुआ है, और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कर सकते वो। फिर भी ऐसा हो गया, सबके सामने हो गया, पति को पुकारा तो सर नीचे कर दिया उन्होंने, पति भी ऐसा हो गए, विश्वदेव को पुकारा उन्होंने भी सर नीचे कर दिया, द्रोण को पुकारा उसने भी नीचे कर दिया, अरे कर्ण को पुकारा वो इतना दानी इतना करुणा वाला व्यक्ति था, फेमस था बहुत, उसने उसको वेश्या बोला उल्टा बचाने के बदले। तो एक समय ऐसा आया ना कि कोई नहीं बचा, अभी जितना जितना सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब बेकार हो गए वो सब। तो उसको लास्ट उम्मीद थी कि मैं मेरे दांतों तले मेरा पल्लू पकड़ के रखूंगी, लेकिन उसके दांत कोमल और 1,000 हाथी का बल वाला दुशासन किधर, कुछ कंपैरिजन है क्या उसका। तो जब उसको समझ में आया कि अभी सारी मेरी शक्ति जो थी ना, या तो पति में थी शक्ति या विश्वदेव में थी, या जितना मेरे को विश्वास था श्रद्धा थी कुछ मन में विश्वास था, वो सब अभी टूट गए, अभी कोई भी सहारा नहीं बचा है, तो फिर उसने गोविंद को पुकारा। तब तक गोविंद को नहीं पुकारा। तो अन्य शास्त्रों में कई जगह भक्तों ने पूछा है कि आपने इतना तक क्यों तड़पाया उसको, वैसे भी आपको बचा नहीं था ना उसको, तो पहले क्यों नहीं बचाया। मतलब पहले उसको बहुत अन्य चीजों पर श्रद्धा थी, बहुत उसको श्रद्धा थी कि ये होगा ये होगा। तो जब वो पूरी तरह से असहाय हो गई, तब जिस तरह से मुझे उन्होंने पुकारा, मैं तो रेडी था, एक क्षण में मैं आ गया उधर, कपड़े के रूप में आ गया और उसको बचा लिया। तो कमी किस बात की है, भगवान तो हमेशा रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आपको उनके अलावा भी और की बहुत वस्तुओं पर भरोसा है, इसलिए वो वेट करते हैं। वैसे वो बहुत श्रूड लवर हैं, वो हमारे संस्कृत में मराठी में शब्द है अनन्य, अनन्य का मतलब अंत है, और कोई अन्य नहीं, अनन्य मतलब उसके लिए और कोई नहीं है, बल्कि एक ही भगवान है बस। और भी हमारे धर्म के अंदर कुछ जोक्स आते हैं ऐसे कि कोई व्यक्ति संकट में आया तो उसने हे गणेश करके पुकारा, तो गणेश भाग के आ रहे थे, उसने उसको हे शिव शिवजी महाराज को पुकारा, तो गणेश रुक गए और शिवजी आने लगे, तो शिवजी को पुकारते पुकारते फिर हे देवी को पुकारा, तो शिवजी रुक गए, देवी आने लगी, ऐसे सब लोगों का नाम लिया, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कौन जाना चाहिए, सबको पुकार रहे हैं। लेकिन सहारा एक होना चाहिए हमेशा, 10 सहारे नहीं होने चाहिए, सहारा एक होगा ना तो ही हम बच सकते हैं। फिर वो व्यक्ति जिसका आप सहारा ले रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी का अनुभव करता है कि हाँ भाई अभी जब आपका विवाह होगा और बालक होगा ना, तो आपको पता है कि ये बालक मेरे ऊपर ही पूरा निर्भर है, मुझे ही देखना है इसको और कोई नहीं, इसके लिए मैं ही हूं, 10 माँ नहीं उसको, एक मौसी, चार मौसी और एक दादी, एक नानी, कोई नहीं है, मैं ही हूं, अकेले हूं। ये ऐसा रिश्ता होता है ना, तो बच्चे का पूरा सहारा, पूरी सहायता प्राप्त होती है बच्चे को। अगर आपको लगेगा कुछ समय मौसी करेगी कुछ समय मम्मी करेगी, तो दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे, मम्मी को लगेगा मौसी करेगी, मौसी को लगेगा मम्मी करेगी, वो दोनों तरफ से भी उपाशी रहेगा वो। इसलिए बार बार कहा गया कि सहारा एक होना चाहिए। तो ये सब बात कहां से निकली थी हमारी बताइए, भक्ति और पुण्य का डिफरेंस के बारे में ये सब बातें चालू हुई थी। तो भक्ति में केवल परम भगवान से हम शरण जाते हैं, वन लॉर्ड एंड वी सरेंडर टू हिम, नो मार्केटिंग, कौन अच्छा है, कौन सी दुकान में साड़ी सस्ती मिल रही है, चार दुकान में देखेंगे फिर लेंगे, दुकान पर प्रेम नहीं है, आपको सस्ते मिलने की बात पर प्रेम है, आपको दुकान पर प्रेम, बाकी आपको ओबेरॉय मॉल में मिल गया तो ओबेरॉय मॉल अच्छा है बोलेंगे आप, लेकिन आपको ओबेरॉय मॉल पर प्रेम नहीं है, आपको सस्ते मिलने की बात पर प्रेम है। इसलिए हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पुण्य और भक्ति में क्या अंतर है, पुण्य आपको कहां तक पहुंचाएगा और भक्ति कहां तक पहुंचाएगी। इस तरह से इस महीने में कोई पुण्य इकट्ठा नहीं होता है, आपके लिए प्रैक्टिकल बात यह है, इस महीने में कोई पुण्य इकट्ठा नहीं होता है, आप कुछ भी करो, भले आप नोटबुक दान करो किसी को, किसी को खाना खिलाओ, पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान को अगर उस कार्य में जोड़ देंगे आप, जब खाना खिला रहे हो किसी को तो वही खाना आपने भगवान को अर्पण किया और प्रसाद के रूप में खिलाया, बात तो वही है लेकिन भगवान कनेक्शन में आ गए उसमें, तो आपको आनंद लाभ मिलेगा उसका, क्योंकि तो पुण्य खाते में नहीं मिलेगा, वो भक्ति खाते में मिलेगा। तो भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया इस महीने को कि आपके समय में, 30 दिन के समय में जो भी मेरे लिए कुछ भी कार्य करेगा ना, उसको मैं आम दिनों से 16 लक्ष बार ज्यादा लाभ दूंगा, 16 लाख टाइम्स आई विल गिव बेनिफिट। एनीथिंग यू डू, अगर आप एक बार हरे कृष्ण बोलेंगे तो आपको 16 लक्ष बार हरे कृष्ण बोलने का लाभ तुरंत मिल जाएगा, इतना डिस्काउंट देकर रखा है। कार्तिक महीने में 1 लक्ष बार मिलता है, कार्तिक महीने से 16 गुना लाभ इस महीने में मिलता है, और भगवान ने नाम भी दिया उसको पुरुषोत्तम, और भगवान ने उस देवी को बताया कि आपके समय पर जो भी व्रत करेगा उसके शरीर में सारे देवता निवास करने के लिए प्रयास करेंगे, मैं भी उसके शरीर में निवास करूंगा, जो पुरुषोत्तम मास का व्रती है, व्रती यानी व्रत करने वाला व्यक्ति है, पुरुष हो स्त्री हो बालक हो कोई भी हो जो इस महीने में व्रत करता है, उसके शरीर में सारे देवता निवास करेंगे, मैं भी निवास करूंगा। और जो सफलता से व्रत पूरा करेगा इस महीने में, वो इस व्रत के फल के स्वरूप इस जीवन के अंत में मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक बार करेगा तो भी काफी है, लेकिन भक्त लोग तो हर बार ही करते हैं, क्योंकि भक्तों को आनंद होता है भगवान के लिए कुछ कार्य करने के लिए। इसलिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई प्रश्न है किसी को इस महीने के बारे में, पूछो तो मैं उसका उत्तर देता हूं। इस महीने में क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी को पता है व्रत की व्याख्या क्या होती है? व्रत किसको कहते हैं? क्या करने से व्रत हो जाता है? वो संकल्प ले लिया, लेकिन वो संकल्प जो आपने लिया वो कार्य व्रत कब बन जाता है? नहीं, वो तो व्रत के टाइप्स हो गए कि आप जब का व्रत लिया है, आपने कुछ भोजन नहीं लेने का व्रत लिया है, आपने शाम को नहीं खाने का व्रत लिया है, या सुबह जल्दी उठने का व्रत लिया है, वो कार्य टाइप्स है उसके। लेकिन व्रत की व्याख्या क्या है? नो, व्रत तीन चीजों से बनता है। अब ये उत्तर आपको परमानेंट आपके मन में फिट होना चाहिए। व्रत नंबर वन स्वेच्छा से करते हैं हम लोग कि मुझे करना है। हर धर्म में व्रत होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में अभी रमजान का व्रत चल रहा है, अभी आपका दिसंबर में मदर मेरी का व्रत आएगा, और बहुत सारे व्रत आते रहते हैं। हर एक धर्म के अपने अपने व्रत होते हैं। तो सबसे पहले व्रत फोर्स से नहीं होता है, मम्मी फोर्स कर रही है मुझे, नहीं अभी नहीं खाना है आपको, ये आज आपको बहुत सारा खाने की इच्छा है, पार्टी भी है मेरे फ्रेंड के बर्थडे की, क्योंकि मम्मी ने बोला आज नहीं खाना है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसको व्रत नहीं कहते। व्रत नंबर वन स्वेच्छा से किया जाता है, बाय द डिजायर ऑफ योर ओन। और व्रत में थोड़ी बहुत असुविधा होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं इस महीने में जलेबी खाने का व्रत लूंगा, रोज दो जलेबी खाऊंगा, उसमें कैसे असुविधा है? तो आनंद ले रहे हैं आप। व्रत का मतलब आपको थोड़ा कष्ट होना चाहिए, जैसे कि आप रोज 5 बजे उठते हो तो मैं कहूंगा कि ये महीने में 4:30 को उठूंगा और जल्दी ठंडे पानी स्नान करके भगवान का नाम का जप करूंगा, ये व्रत है। ये महीने में मैं जमीन में सो जाऊंगा, गद्दे में, नरम नरम गद्दे में नहीं सोऊंगा, या मुझे बहुत मीठा पसंद है, मैं इस महीने में मीठा नहीं खाऊंगा। थोड़ी असुविधा होना चाहिए, थोड़ा कष्ट होना चाहिए। मैं रोज सवेरे उठकर मंगल आरती जाऊंगा, उतना आसान काम नहीं है। रोज उठना, रोज सुबह जल्दी उठ के स्नान करके टाइम पे वहाँ पहुँच जाना, भगवान का दर्शन करना, आरती अटेंड करना, इट्स नॉट इजी थिंग। आपको सोना अच्छा लगेगा उस समय, लेकिन आप वो त्याग करके भाग रहे हो। फिर आप बोलेंगे मैं रोज श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ूंगा, भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, रोज श्लोक पढ़ूंगा, उसका अनुवाद पढ़ूंगा, तात्पर्य भी समझ लूंगा, बस एक उसको व्रत। हाँ, दो चीज हो गए ना, एक हो गया स्वेच्छा, एक हो गया इनकन्वीनियंस, असुविधा, और थर्ड थिंग है व्रत केवल भगवान के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। ये करने से मुझे MBBS में एडमिशन मिलेगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, ये स्वार्थी हेतु हो गया। व्रत केवल भगवान के लिए होता है। तो ये जब तीन चीज होती है ना किसी कार्य में, तो उसको आप व्रत बोल सकते हैं। फिर वो व्रत जो है वो कुछ समय के लिए होता है, कि भाई कार्तिक महीने में होता है, अधिक महीने में होता है, या और कई चैत्र की नवरात्रि में है, या अश्विन की नवरात्रि में है, दशहरे के पहले वाली। तो आप व्रत करते हैं कि हम लोग इतना भगवान का नाम लेंगे। और दो प्रकार के व्रत होते हैं, एक होता है विधि व्रत और एक होता है निषेध व्रत। विधि का मतलब क्या होता है? डूज एंड डोंट्स। विधि व्रत का मतलब है डूज, एंड निषेध व्रत का मतलब है डोंट्स, कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं गद्दे पे नहीं सोऊंगा, इसको निषेध व्रत कहते हैं। और विधि व्रत का मतलब है कि मैं एक श्लोक पढ़ूंगा भगवद गीता का, एक प्रार्थना रोज गाऊंगा, रोज सुबह मंगल आरती में जाऊंगा, कुछ करने वाला व्रत है वो, ना करने वाला चीज नहीं, करने वाली चीज है वो, उसको करना है आपको। तो विधि व्रत जो है ना, करने वाली चीज वो ज्यादा पावरफुल होती है, पॉजिटिविटी है ना उसके अंदर। वो छोड़ने वाला व्रत भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम ये है कि समझा मैं बोलूंगा कि मैं भी ये महीने में जलेबी नहीं खाऊंगा, तो ना मेरा बार बार जलेबी की याद आएगी मुझे। कोई शादी में गया और जलेबी रहेगा उधर, तो फिर लगा अरे मुझे नहीं खाना है इसको, अरे मुझे नहीं खाना है इसको। तो भगवान के अलावा उसी पर ध्यान रहेगा जो मुझे छोड़ना है, उसी पर ध्यान लगा रहेगा, नहीं छोड़ना है। अब आपको बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि 10 मिनट के लिए आपको ना सब कुछ सोच सकते हैं, आप कुछ भी चाहिए आप सोचो, लेकिन नीले हाथी के बारे में सोचना नहीं है। थिंक एनी थिंग एक्सेप्ट ब्लू एलिफेंट। तो आपको ब्लू एलिफेंट के बिना कोई कुछ चीज याद नहीं आएगी। ये मन मन का स्वभाव है, इट्स द नेचर ऑफ द माइंड। इफ आई टेल यू डोंट थिंक ऑफ ब्लू एलिफेंट, तो ब्लू एलिफेंट के बारे में आप सोचेंगे। दैट्स अ ट्रिक टू मेक यू थिंक ऑफ ब्लू एलिफेंट। तो निषेध व्रत का प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार मन तड़पाता है आपको, अरे आपने बोला कि अभी ये महीना तो मैंगो का महीना है, तो मैं भी इस महीने में ना मैंगो ही त्याग कर दूंगा, सबसे प्रिय वस्तु। तो सब जगह आम दिखेगा आपको, कहाँ जाएंगे वहां पर आम, कोई शादी हो नहीं हो घर पे जाओ किधर, सब जगह आम दिखेगा। तो हर समय आपको यही कहे मुझे नहीं खाना है, ये मुझे नहीं खाना है, ये मुझे नहीं खाना है, तो भगवान का चिंतन थोड़ा कम होता है उसमें। इसलिए विधि व्रत ज्यादा अच्छा है जो भगवान के लिए डायरेक्टली किया जाता है। दिस इज व्हाट आई एडवाइस। और व्रत का और एक मतलब होता है कि व्रत में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा व्रत लेना नहीं चाहिए जो आपको मुमकिन ही नहीं, एक दिन में फेल हो जाएंगे आप, एक दिन 30 दिन के बाद भूल ही जाओ, एक ही दिन में आपका पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप बोलेंगे मीठा भी नहीं खाऊंगा, तला भी नहीं खाऊंगा, एक ही बार खाऊंगा और एक ही बार पकवान खाऊंगा और दोनों बार फल खाऊंगा, ऐसे कठिन कठिन बातें करेंगे ना आप। ऊपर 3 बजे भी उठूंगा और मंगल आरती जाऊंगा और रोज 12 माला एक्स्ट्रा करूंगा, 16 माला करते करते दम निकलता है वैसे, और 12 माला भी एक्स्ट्रा करूंगा, ऐसे कब करेंगे आप व्रत? आपको बड़ा उत्साह आएगा लेने में, कागज में लिखने में, साइन करने में, संकल्प करने में बड़ा आनंद आएगा आपको, लेकिन करने जाएंगे तो पहले दिन से आपका फेल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत वैसा थोड़ा सा कष्ट होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन होने लायक व्रत करना चाहिए ताकि आपका उत्साह बना रहेगा। आपको 30 दिन तक करना है उसको ना, थोड़ी आपको 2 दिन करके छोड़ देना है। 2 दिन में आप कर सकते हो, अगर 2 दिन का व्रत करना है, सैटरडे संडे व्रत करना है तो कर सकते हैं आप, जोर लगा के हाइयो। लेकिन 30 दिन करना मुश्किल है, सर्दी हो जाएगी आपको बीच में, कभी आपको बुखार आ जाएगा, कभी बहुत काम करके थक जाएंगे बहुत और नींद ज़्यादा आएगी तो सुबह ही उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसा काफ़ी। इसलिए व्रत लेते समय ना सोच समझ के व्रत लेना चाहिए। अति उत्साह में व्रत लेंगे तो फिर फेल होने का ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन व्रत सभी को लेना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को मनुष्य समझते हो तो मनुष्य जीवन व्रत के बिना बेकार है। मनुष्य होकर आप कोई व्रत नहीं करते हो तो आपका मनुष्य जीवन ही बेकार है। इज इक्वल टू एनिमल लाइफ। ऐसी कौन सी बातें जो मनुष्य जीवन में ही मिलती है हमको, बताइए। नहीं नहीं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप ह्यूमन अभी हो आप, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्राप्त है जो जानवरों को, पंछियों को, मछलियों को प्राप्त नहीं है? भक्ति करने की पॉसिबिलिटी है इसमें, और विचार करने की क्षमता। नाम क्या है आपका? मानव, मनुष्य। किस चीज से बना है वो? जिसका मन बहुत पावरफुल है, विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए योग्य है, ऐसा मन आपको इस शरीर में मिला है, इस देह में, इस बॉडी में, इस जीवन में। इसलिए आपका नाम ही मानव पड़ा है। और एक कारण है क्योंकि मनु हमारे पूर्वज थे, इसलिए और भी नाम मानव पड़ा है। लेकिन एक कारण ये भी है कि मन हमारा बहुत स्ट्रांग है, विचार करने लायक है। और क्या चीज़ है इस दुनिया में? वाचा है आपको, आप भाषा बोल सकते हो। बाकी सब लोग टी टू टा ऐसे ही, भो भो ऐसे ही बोलते हैं। लैंग्वेज अपना हमारे जैसी, उनकी भी लैंग्वेज है लेकिन हमारी लैंग्वेज बहुत उन्नत है, यानी कि एडवांस्ड लैंग्वेज है, कई प्रकार के लैंग्वेज है। और कौन सी ऐसी चीज है जो मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्णता से आपको प्राप्त है? बुद्धि प्राप्त है आपको, आप सब काम बुद्धि से कर सकते हो। जो चांद पे जाना है तो आप रिसर्च करके रॉकेट बना के चांद पर पहुंच सकते हो, और आपको लगता है कि मुझे बैठ के पंखा चालू करना है तो आप रिमोट बना के पंखा को बंद चालू कर सकते हो। ये सब करने की बुद्धि भगवान ने आपको दी है। आपको लगता है कि वो क्या जानवर लोग कच्चा खाना खाते हैं, मैं उसको अच्छी तरह से भिंडी का ऐसा खाना है, भिंडी मसाला बना के खाऊंगा, तो उसका रेसिपी बनाएंगे आप, ट्रायल करेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे उसको, फिर पंजाबी भिंडी अलग, महाराष्ट्रीयन भिंडी अलग, साउथ इंडियन भिंडी अलग, ऐसे आप सब कुछ बनाएंगे बुद्धि के आधार पर। और कौन सी वस्तु है मनुष्य जीवन में? इच्छा को पूर्ण करने का शक्ति आपको भगवान ने दी है ना। आप ऐसे इच्छा करेंगे कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, तो आप कोशिश करके अमेरिका पहुंच सकते हो। और कौन सी स्पेसिफिक चीज है जो ह्यूमन लाइफ में आपको दी है बताओ? हाँ, सही और गलत को पहचानने की शक्ति मनुष्य में है। आप कितने भी अज्ञानी होंगे ना, तो अंदर से एक आवाज निकलती है गलत है। कितना भी आदमी अज्ञानी या झुपड़पट्टी वाला रहेगा ना, तो भी उसको पता चलता है, जब वो किसी के पॉकेट में 10 रुपए निकालता है तो उसको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो करते रहता है। शराब पीने वाले आदमी को मालूम रहता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, स्मोकिंग वाले को मालूम रहता है कि गलत काम कर, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, आदि हो गया उसके। उसको उसको मालूम है क्या नाम है? सद असद विवेक बुद्धि कहा गया उसको, सार असार बुद्धि कहा गया। मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें समझने की जो बुद्धि है ना, वो मनुष्य जीवन में, उसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलिज्म। यू कैन रैशनलाइज व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। और एक चीज है निश्चय, जो केवल मनुष्य कर सकता है। ऐसे कहा गया है मनुष्य माइनस निश्चय इज इक्वल टू एनिमल। निश्चय खत्म हो गया, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इज नॉट देयर, वी आर एज गुड एज एनिमल्स। और तपो दिव्य पुत्र का आदि, तप करने की शक्ति केवल मनुष्य में होती है। ऑस्टेरिटीज बोलते हैं उसको, कुछ चीज को ना बोलना कि नहीं मुझे अभी 12th का एग्जाम है, मैं टीवी नहीं देखूंगा, अभी बस 12th के एग्जाम होने तक मैं अभी टीवी को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना मोबाइल यूज करूंगा, व्हाट्सएप सब बंद, एक छोटा सा फोन रखूंगा मेरे पास SMS करने के लिए, फोन करने के लिए, बस। नो SMS, नो एंड्रॉयड, नथिंग। इसको कहते हैं कुछ ना कहने की शक्ति। ये मेरे लिए आज अच्छा नहीं है, मैं भी नहीं करने वाला हूं। जानवर नहीं कर सकता ऐसे, उसको वो आपके केले के ठेले में आकर मुंह डालेगा ना, अब एक डंडा मारोगे उसको, 2 मिनट वापस आएगा, वो 2 मिनट के बाद में भूल भी जाएगा और वापस भी आएगा। उसको कंट्रोल नहीं है कि भाई ये भैया ने मुझे डंडा मारा था तो मैं इधर नहीं जाऊंगा और भैया के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना करते रहेगा वो, और उसको याद नहीं रहेगा क्योंकि वो जानवर है। तो आपको मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य की तरह भी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। केवल मनुष्य का शरीर होने से मनुष्य नहीं बनता आदमी, मनुष्य के शरीर में भी जानवर रह सकता है। दो पैरों का जानवर, द्विपद पशु, ऐसे भागवत में लिखा है। जो इस मनुष्य जीवन में आकर व्रत नहीं करता है, भगवान के लिए निश्चय नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, आत्मा के बारे में जानकारी करने का प्रयास नहीं करता है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, वो पशु है। और ऐसा कहना चाहिए कि जब वो मनुष्य होकर भी भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, तो वो पशु से भी नीचे चला जाता है। हम लोग बेकार में पशु लोगों को बहुत बदनाम कर रहे हैं कि बुद्धिहीन, निश्चयहीन, व्रतहीन जीव जो है वो पशु है। लेकिन एक भगवान को प्राप्त करने का विधि आपने छोड़ दिया तो पशु भी आप लोगों से बढ़कर है, क्योंकि पशु कभी भी निसर्ग के कोई नियम का लोप नहीं करता है। आपने कोई ऐसा पशु देखा है जो एबॉर्शन करता है? क्या कुत्ता बोल रहा है कि छे छे पिल्ले हो रहे हैं, मुझे अभी कैसे पालूंगी मैं, 5 लोगों को गिरा दो, एक ही को पालूंगी, टाइम ही नहीं मेरे पास करने के लिए। अरे चूहा भी 6-6 बच्चों को, 8-8 बच्चों को जन्म देता है। लेकिन आपने किसी भी जानवर को देखा है क्या मारते हुए, बच्चों को एबॉर्शन करते हुए, नहीं चाहिए ज्यादा हो रहा है? एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो खुद के स्वार्थ के लिए बच्चे को गिरा देता है, तो वो मनुष्य जानवर से श्रेष्ठ है क्या? दूसरी बात, हर एक प्राणी का ना एक समय होता है नर मादी को मिलने का। देखो आप, ऐसा बारिश का मौसम आएगा तो पंछी घरटी बनाएंगे, घर बनाएंगे, और फिर उनका मिलन होगा, फिर वो अंडा डालेंगे। साल भर नहीं करते वो काम, ये उनका भी समय होता है, ऋतु होता है कुछ। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो दिन रात ऋतु महीना को देखता नहीं, 12 महीने चलते रहता है उसका काम। प्राणियों के अंदर भी ऐसा है कि गर्भवती जब होती है ना, कुत्ती बिल्ली जो भी, उसका नर उसको स्पर्श नहीं करता कभी, जो गर्भवती है वो, जो तो बच्चे को दूध पिला रही है, बिल्ली या जो भी हो, तभी कोई भी नर सामने नहीं आता है। जब वो उससे फ्री हो जाएगी ना, फिर उनका वापस संबंध होता है। मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य नए नए तरीके सिखाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, इसमें भी करो, गर्भवती अवस्था में भी कर सकते हो, फर्स्ट 3 महीने में कर सकते हो, लास्ट 6 3 महीने में नहीं करना, जैसे कुछ कुछ बताते रहते हैं नॉनसेंस। तो इस तरीके से मनुष्य से भी जानवर एक तरह से ऊपर हैं, अगर मनुष्य भक्त नहीं है भगवान का। तो आपको सोचना है ये कि जब भगवान की भक्ति हम नहीं करते हैं तो हम जानवर से भी नीचे गिर जाते हैं। क्यों जानवर को बदनाम कर रहे हो? पाशवी कृत्य के लिए, नहीं पाशवी कृत्य मतलब जानवर जैसा कार्य किया। अरे जानवर जैसा कार्य नहीं किया उसने, जानवर भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। कभी जानवर कभी रेप करते हैं? कभी जानवर लोग कभी देखा आपने? कभी नहीं करते। देयर इज नो रेप इन एनिमल किंगडम, रेप केवल मनुष्य करता है। सोच लीजिए इसके बारे में, विचार करने लायक चीज है ये। एक मनुष्य बनना कितने ज्ञान वाली बात है, अगर ज्ञान होगा तो आप मनुष्य बन सकते हो, नहीं तो बहुत लोग मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं लेकिन रहते जानवर की तरह ही है। पहले उसमें से आपको ऊपर उठना है और मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने के बाद फिर भक्ति भक्ति की बात आगे शुरू होती है उसके, वो दूर की बात है वो। हाँ मैंने तिलक लगा दिया, मैं भक्त बन गया, ये सब झूठ बात है, इसमें कुछ दम नहीं है। हमें जब मैं जब पहली बार हरे कृष्ण मंदिर में गया ना, तो मुझे बताया गया कि जिस दिन आप मांसाहार छोड़ देंगे, लहसुन प्याज छोड़ देंगे, चाय कॉफी छोड़ देंगे, व्यभिचार जुआ नशा ये सब छोड़ देंगे और केवल भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्रसाद खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो भी है, जो भी कुछ खाएंगे, हाँ भेलपुरी खाएंगे या सेवपुरी खाएंगे या तो मसाला डोसा खाएंगे या चावल दाल खाएंगे, जो भी खाएंगे वो मुझे भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद के रूप में खाएंगे और रोज भगवान के नाम का जप करेंगे, तब आप मनुष्य बन जाएंगे। उसके आगे आपको भक्ति करनी है, एक पहली मंजिल है, इसको पार करेंगे तो फिर अगली मंजिल को आप सोच सकते हो कि मुझे जाना है उधर, एडमिशन लेना है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप लोग सोचते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो बहुत जन्मों के बाद मिलता है, तो जो जानवर नहीं कर सकते वो सब हमको कर लेना चाहिए। अरे वो क्या कच्चा खाना खाते हैं हम लोग, वो आलू का पराठा बना के खाएंगे? हमारे में इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, हम डांस कर सकते हैं, हम गीत गा सकते हैं, स्वर में गा सकते हैं, गायक बन सकते हैं, नर्तक बन सकते हैं, वादक बन सकते हैं कि वाद्य बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, मुरली बजा सकते हैं, नाटक में काम कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। जानवर में कोई हेयर फैशन है क्या? लेकिन इंसान में कितने प्रकार की हेयर फैशन है, आप क्या क्या कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं उसका, हेयर स्टाइल कितना बदल सकते हैं, अलंकार कितने पहन सकते हैं। तो हमको क्या लगता है कि ये सब कर सकते हैं हम, तो मनुष्य जीवन में ये सब करना चाहिए? तो मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभता से मिलता है, लेकिन मनुष्य जीवन ये करने के लिए नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कहा गया है कि 4 प्रकार की खुशियां होती लाइफ में सब प्राणियों के अंदर, पता है आपको? आप कोई भी खुशी ले लो, वो 4 कैटेगरी में इसमें से एक में बैठ जाएगी, वो आहार, निद्रा, सुरक्षा और मैथुन, ये 4 चीजें हैं। आहार मतलब केवल भोजन करना नहीं है, धन इकट्ठा करना भी आहार है, कपड़े इकट्ठा करना भी आहार है, अलंकार इकट्ठा करना भी आहार है, तो आहार। और दूसरा आनंद है सोने का, तीसरा आनंद है सेक्स का, और चौथा आनंद है शत्रु से बचने का। बार बार देखो जानवर, देखो कैसे कुछ खाते हैं तो इधर देखते रहते हैं इधर उधर, है ना? चिड़िया को देखो कभी आप कैसे, वो एक जना खाती है, दो जना दिखती है, वापस एक जना खाती है, आपको दिखती है, मतलब शी इज सेविंग हर सेल्फ, कोई कौवा ना आ जाए, कोई और कोई आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, खा ना जाए। और हमारे प्रभुपाद जी उससे भी आगे एक बात बताते थे, वो कहते हैं दुनिया में केवल 2-3 ही सुख है। आपको हंसी आएगा सुनकर बहुत, लेकिन आप गहरे से विचार करेंगे आपको फिर समझ में आएगा एक्चुअली हाउ ट्रू इट इज। एक है दिन में क्लीन बाउल होने तक लैटरिन करना, सबसे सुख की शुरुआत सुबह होती है जब आपका पेट साफ हो जाता है, जिस दिन पेट साफ नहीं होता है आप सुखी नहीं रह सकते। डू यू एग्री विद मी? जोक छोड़ दो, आप सोच के मुझे बताओ, आपको अगर 3-4 दिन पेट में साफ ही नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही लगा नहीं, दिन भर आप परेशान रहेंगे, सर दुखेगा आपका, जी मचलाएगा आपका, पेट में भूख लगेगी नहीं, सर भारी भारी रहेगा आपको, अस्वस्थ लगेगा आप, दिल नहीं लगेगा, किस काम करने में मन नहीं लगेगा आपको। और जिस समय साफ हो गया एकदम समा हल्का हो जाएगा, कि हवा में उड़ रहा हूं मैं, ये सच है। सबसे स्वस्थ आरोग्य का एक लक्षण है बॉवेल्स क्लीन, और जिसके बॉवेल्स क्लीन सुबह होते हैं वो भाग्यवान जीव होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि द फर्स्ट हैप्पीनेस इन लाइफ इज टू पास स्टूल, क्लियर स्टूल्स, और सेकेंड कहते हैं टू हैव सेक्स, और इस दुनिया में इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। तीसरा आनंद है खाने का, चौथा आनंद है सोने का। बहुत अच्छा लगता है जब भी सोने का मौका मिले तो बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि शनिवार को सो जाए और सोमवार को उठे। बीच में का दिन ही ना आना नहीं चाहिए, कैलेंडर का दिन आना नहीं चाहिए, एकदम आफ्टर 1.5 डेज। इतना लोगों को नींद में आनंद आता है और खाने में बहुत खुशी होती है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, खाना बोलेगा तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, गा के खाओ, लाइन में लग जाते तुरंत, वेट करते, कभी वो हजम हो जाए तो दोबारा जाएंगे, और जब अगर हजम हो गया और कहीं और पहुंच गए और वो खाना नहीं मिला तो उसकी याद आती है, अरे दोपहर को तो खा नहीं पाया, अभी तो खाने का दिल कर रहा है मुझे, तभी तो कितना सामने खाना था, आई कुड नॉट ईट, अभी लग रहा है मैं अभी वहाँ होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अभी मैं रत्नागिरी में आ चुका हूँ, शादी तो उधर थी सावंतवाड़ी में। होता है ना ऐसे, इमेजिन। और ये सारे आनंद जो मैंने बताया ना आपको, वो सब टेम्पररी है। आज अगर पेट साफ हो गया आप खुशी हो गए तो कल हो गई, ऐसे गारंटी नहीं है। आज भोजन अच्छा मिला आपके पसंद वाला तो कल मिलेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। और आगे की बात तो करूंगा ही नहीं, आपको सबको पता है उसमें कितना आनंद है, कितना नहीं है, कितना स्ट्रगल है। तो ये आनंद जो है ना, ये जिसको समझ में आता है कि इसमें कोई दम नहीं है, आप खाली मेहनत करते जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं, खुशी नहीं, कुछ ढूंढते रहेंगे आप लेकिन आपको मिलेगी नहीं वो एंड तक। अभी आपको लगेगा, अभी लगेगा कि एक 50 लाख मिल जाएगा ना तो मैं VRS ले लूँगा, रिटायर हो जाऊँगा, बस हो गया। लेकिन जब 50 लाख मिलने लगते हैं, 49 लाख हो गए, तो आपको लगता है अरे 50 लाख में क्या है, कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए रिटायर होने के लिए। 1 करोड़ होते नजर आएगा तो आपको लगेगा अभी 10 साल बाकी, अभी 1 करोड़ में क्या होगा, अभी कम से कम 4-5 करोड़ तो होने चाहिए सेविंग में, तभी रिटायर में आनंद आएगा जरा। और जब वहां पहुंचेगा तो उसको आगे का दिखेगा, वहां पहुंचेगा तो उसके आगे का दिखेगा। क्योंकि अगर मेरी बात सच नहीं है तो भारत में कम से कम ऐसे कहते हैं 500 लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ से अधिक पैसा है, 1000 करोड़ से अधिक। आगे तो जाओ आप, 2.5 लाख करोड़ भी किसी के पास है, लेकिन 1000 करोड़ से अधिक वाले लोग 500 से ऊपर है भारत में। और भारत वर्ल्ड का चौथा देश है रिचनेस में, प्रॉपर्टी में और रिचनेस में, और हम लोग गरीब देश बोलते हैं अपने आप को। तो 1000 करोड़ वाला जो आदमी है वो आदमी मेहनत कर रहा है 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, और आग बोल रहे हो कि 1 करोड़ में मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन वो रिटायर नहीं हो रहा है। वो क्यों रिटायर नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको 1000 करोड़ मिलने के बाद में दिखता है कि इसके पास 2000 करोड़ है, तो मैं क्या कम हूँ क्या, ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ इससे मैं, उसके पास 2000 करोड़ है, मैं भी 2000 करोड़ बनाऊंगा। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं। कभी संतुष्टि होती नहीं है, कभी होती ही नहीं संतुष्टि। और संतुष्ट होने का किसके हाथ में है? केवल आपके हाथ में है। कहाँ फुल स्टॉप देना है ये केवल आपके हाथ में है। कितना चाहिए और कहाँ फुल स्टॉप देना है, दिस इज ओनली योर हैंड्स। और सारे सुख की जो चाबी है ना वो उसी में है। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है ना वो कभी भागता नहीं इस चीजों के पीछे। जो आएगा संतुष्ट रहता है, उसके अंदर जैसे भी रहेगा वो संतुष्ट रहता है। और जो संतुष्ट व्यक्ति है वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जो असंतुष्ट है वो भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? क्योंकि जो असंतुष्ट है, जो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और कोई मेहनत करेगा ना वो, अगर आपको और कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करेगा, वो भगवान को टाइम नहीं उसके पास। इसलिए संतुष्टि ये सबसे पहला धन है, और वो केवल आप ही बुद्धि से उसको डिफाइन कर सकते हो। क्या चाहिए आपको और कितना चाहिए, कितने में संतुष्टि प्राप्त करनी है, कहां तक दौड़ लगानी है आपको, विचार कीजिए आप इस बात पर। और ये सब बाजू में रखे, जब आप भगवान के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये जीवन दिया है आपको। ये शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है, इतना सॉफ्टवेयर फिट करके रखा हुआ है कि आपको भगवान से जोड़ सकता है वो। पुराने जमाने में ना वो होता था, बड़ा टेलीफोन मालूम है आपको, ऐसा उठा के कान पे लगाने का, इतनी बड़ी वायर काली रंग की है ना, वो फोन में आप सिम कार्ड डाल सकते हो क्या, और दूर अमेरिका में बात कर सकते हो? वो फोन में वो सिम कार्ड डालने की सुविधा नहीं है, ना उसमें मेमोरी कार्ड डालने की सुविधा है, और ना उसमें व्हाट्सएप के फोटोग्राफ देखने की सुविधा है। तो वो फोन छोड़ के आपको वैसा हाथ वाला चौकोनी फोन लेना पड़ेगा जिसमें एंड्रॉयड की सुविधा है, उस पर सिम कार्ड डालना पड़ेगा, वो फिर कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी पैसा भर के, फिर आपको वो उसका पूरा लाभ मिलने लगेगा। वैसे ही ये ह्यूमन लाइफ है, इस ह्यूमन लाइफ में बाकी सुविधा सुविधा है, आप सेक्स भी कर सकते हो, खाना खाने का आनंद भी ले सकते हो, बहुत सारा सो भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जो जानवर भी करते हैं, और जो जानवर कर रहे हैं उससे अच्छी तरह से आप कर सकते हो इस शरीर के अंदर, लेकिन उसके लिए ये शरीर आपको नहीं दिया है। बाय द वे कर सकता है, जैसे हवाई जहाज, हवाई जहाज वो रोड पे चल सकता है, चल सकता है हवाई जहाज रोड पे चल सकता है, यस और नो, कैन इट रन ऑन रोड और नो, आंसर इज यस और नो, यस इट कैन रन ऑन रोड, लेकिन वो रोड पे चलने के लिए बनाया क्या उसको, रोड पे चलता है इसका मतलब रोड पे चलाने के लिए बनाया नहीं उसको। हम लोग बोले नहीं भाई आपको ये प्लेन ले लो और आपको दिल्ली जाना है तो ये लो फ्लाइट लो दिल्ली जाओ, तो वो फ्लाइट लेकर रोड पे जा रहा है, हाईवे से आगरा से उसको दिल्ली पहुंचना है, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल आदमी है, इसको हवाई जहाज छीन लो इससे, इसको कार दे दो, कार रोड पे चलने लायक है, वो कार में बैठ कर दिल्ली गया, अरे क्या रे कार में मेरे को उड़ना है हवा में, तो कार हवा में उड़ सकती है क्या, दो घंटे में दिल्ली पहुंचना है मुझे कार में बैठ के, नहीं हो सकता ना। उसी तरह से मनुष्य शरीर में इंद्रिय भोग करने की सुविधा है, लेकिन इंद्रिय भोग करने की सुविधा के लिए ये नहीं दिया गया आपको, जैसे हवाई जहाज आपको उड़ने के लिए दिया है, रोड पे चलाने के लिए नहीं दिया है, रोड पे चल सकता है फिर भी वो रोड पे चलने के लिए नहीं दिया है उसको। ये आपको समझ में आया ना, तो आपका जीवन सफल है। अभी आप दारू भी पी सकते हो, नशा भी, सिगरेट नशा, ब्राउन शुगर भी पी सकते हो, मनुष्य शरीर में कर सकते हो, कुत्ता बिल्ली नशा नहीं करता है, और एक डिफरेंस है, वो नशा करता है कुत्ता बिल्ली कोई, उसको आदत लगी हुई है, रोज जाता है और अपना मेहनत करके पैसा जमा करता है और दुकान में जाके दारू पी के आता है कुत्ता, ऐसा होता है क्या? आदमी लोग उसको पिलाते हैं मजा करने के लिए, लेकिन कुत्ता उस किसी को हैबिट नहीं है नशा करने की, मनुष्य को हैबिट है। तो ये शरीर में आप नशा लेकर ऐसा आनंद ले सकते हो, लेकिन वो करने के लिए शरीर नहीं दिया है, बहुत सारी फैसिलिटीज है लेकिन आपको उसी के लिए शरीर नहीं दिया। ये शरीर आपको दिया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान को केवल इसी शरीर की बुद्धि से आप प्राप्त कर सकते हो, इस शरीर की सुविधा से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। और अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर ना, और आप सब आप लोगों की जगह पर कुत्ता बिल्ली पंछी बैठे होते, तो मैं इतनी देर बोल पाता क्या उनके साथ में? ये सब बातें मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे सामने इंसान बैठे हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कैसे बोलूँगा, मैं पंछी बैठे, कबूतर बैठे, तोता बैठे हुए हैं, कुत्ता बैठे, बिल्ली बैठे, और मैं भगवत गीता पे प्रवचन देते जा रहा हूँ, वो लोग देख रहे हैं, अभी कभी दाना फेंकेगा मेरे ऊपर, वेट करेगा वो, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे, लेकिन आप लोगों की समझ में आएगा। आप अगर चौथी पास भी हो या MBBS भी हो या MD हो, ये बात आपको समझ में आएगी। रिक्शा ड्राइवर है ना, वो अपना वृंदावन का रिक्शा चलाता है, सब बोलेगा आपको पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, बोलेगा कर्म का सिद्धांत बताएगा आपको, है रिक्शा वाला गरीब आदमी है वो, लेकिन सब मालूम है उसको, क्योंकि इंसान है वो, इसलिए वो प्राप्त कर सकता है। पैसा ना होने पर भी और अनपढ़ होने पर भी ये ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है, वो समझ भी सकता है इस बात को, पाप पुण्य क्या है, गलत काम क्या है, अच्छा काम क्या है, गलत काम क्यों नहीं करना चाहिए, उसका फल क्या होता है, ये सब उसको पता है। उसका आगे डिग्री नहीं है, MBBS MD और PhD डिग्री नहीं उसके पास, लेकिन ये बात उसके दिमाग में समझ आएगी, वैसा दिमाग भगवान ने आपको दिया है, और केवल वही छोड़ के आप सब कुछ करते हैं दुनिया में, है ना दुर्भाग्य अपना, ओनली लिविंग दैट पार्ट, एवरीथिंग एल्स वी डू, बोलते हैं ये जिंदगी मिलेगा दोबारा, ये सोचकर बाकी सब काम कर लेते हैं और ये काम नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य लोग हमारे जो है ना वो बताते हैं कि अधिक मास के बारे में लोगों को जानकारी दो, जा जाकर दो, बार बार दो, 15 बार दो, पूछेंगे तो बार बार देते रहो, लेकिन दो उनको जानकारी, क्योंकि इसमें थोड़े समय में बहुत सारा लाभ होने की संभावना इस महीने में है, इसलिए लोगों को जानकारी दो व्हाट टू डू। अभी 4-5 दिन, आज सुबह मुझे व्यक्ति मिला, बोला कि प्रभु जी मुझे अधिक मास का व्रत करना है, लेकिन 4-5 दिन अभी चले गए, एक हफ्ता चला गया है, अभी भी करना है मुझे, क्या करना है बताइए, तो मैं तुरंत बता दिया उसको। या तो मैं उसको ऐसा बोलना मुमकिन था, क्या प्रभु जी आप 7 दिन वेस्ट कर दिया, आपका लाइफ बेकार हो गया, ऐसा बोलना था मुमकिन था मुझे, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, एक मिनट बता दिया क्या क्या करना है, तुरंत उसने बोला कि अभी आज से करूंगा मैं। इतना पावर है इस महीने में, इतनी शक्ति है, तो अनजान व्यक्ति को भी जा जाके बोलना चाहिए व्रत करने के लिए, आप लोग भी कीजिए, भक्ति विधान में जुड़ने का यही लाभ है, क्योंकि अभी ऑन ड्यूटी एक एक घंटा स्पेंड करके किसको टाइम है बताने के लिए, किसको इंटरेस्ट है, किसको पढ़िया है, कि आप करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस करो अपना, काम करो, बस इतना पगार लेते हो उतना काम करो, बाकी व्रत नहीं करना आपकी मर्जी है, जो करना है करो, वो केयर्स, बट यहाँ पर वो समय दिया जा रहा है आपको, नॉलेज दिया जा रहा है, इंस्पिरेशन दिया जा रहा है, वैसे वातावरण बना के रखा है, एटमॉस्फेयर बना के रखा है। हम आपको बोलेंगे अधिक मास में भगवान को दीपक दिखाना चाहिए, इधर भक्तिविधान में रेडीमेड दीपक बना के रखे हैं, माचिस भी रेडी रखा है, एक लैंप भी जला के रखा है, जला के भी हाथ में देते हैं, इमेजिन, या यू गो टू भक्तिविधान, यू कम हियर, आपको कोई जरूरत नहीं, अरे हाथी भूल गया, अरे घी भूल गया, अरे मैं माचिस भूल गया, कोई जरूरत नहीं, आप खाली आ जाओ वहां पर, खाली इतना ही करो, इच्छा से हाथ घुमाओ ऐसे 3 बार उतना तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी तो वो तो हम नहीं कर सकते, बच्चा होगा तो वो भी घुमा देंगे आपका हाथ, लेकिन उतना कम से कम करो, साधन हमारा भाव तुम्हारा है ना, प्रोविजन इज आवर्स, भाव मूड इज योर्स, डिवोशन इज योर्स, भाग्य है इस जगह का, बोल रहा हूँ, कौन सा ऐसा अस्पताल दुनिया में, कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सा IT कंपनी है, कौन सा लकड़ी का कंपनी है, विमान कंपनी है, जिसमें स्पिरिचुअल केयर का बेनिफिट मिल रहा है आपको, हु केयर्स, 12-15 घंटा रगड़ो और जाओ, और कल सुबह टाइम पे आना है वापस, जाने का टाइम पूछना नहीं है, खाले आने का टाइम फिक्स है, पीपल आर स्लॉगिंग डे एंड नाइट, दिमाग खराब हो गया उनका, पता नहीं क्या हो रहा है उनको, ना नींद मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, ना बीवी मिल रही है, ना बच्चे मिल रहे हैं, खाली जाना और आना बस दिन रात कुछ पैसों के लिए, फिर छोड़ देते हैं उसको, नहीं करना है हमको, मरना नहीं है, तो ये सब करते समय भक्ति विक्ति की तरह बहुत दूर की बात है, हु केयर्स फॉर दैट, आप लोग करो, लाभ लो, ऑन ड्यूटी लाभ लो, करो, इसी के लिए जिंदगी है। हमारे गुरुदेव ने बताया था जब हॉस्पिटल खोलेंगे तो आम हॉस्पिटल तरह काम नहीं करना है आपको, ये अस्पताल में आने वाले हर एक व्यक्ति को आपको भगवान से जोड़ देना है, चाहे डॉक्टर है या नर्स है या पेशेंट है या कोई चपरासी है, कोई मेहमान है, कोई दवा बेचने वाला MR है, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको भगवान से जोड़ दो। डॉक्टर शिवप्रसाद भी सुबह आज प्रार्थना में यही बोल रहे थे, ये हॉस्पिटल का काम ही है कि इसके आपके संपर्क में जो भी आएगा उसको भगवान से जोड़ दो, और उसको भगवान से जोड़ने के पहले खुद जुड़ जाओ क्योंकि आप कनेक्शन किसको दे सकते हैं, अगर आपके पास कनेक्शन होगा तो ना, हाउ कैन यू गिव कनेक्शन टू अदर्स व्हेन यू डोंट हैव कनेक्शन योरसेल्फ, ऐसा है वो, खुद जुड़ जाओ, लोगों को जोड़ो, और यही इसके लिए आप ऐसा करेंगे ना तो भगवान आपके रेडी हो जाएंगे। क्यों रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका काम है, वो सबको जोड़ना चाहते हैं और आप उसमें हेल्प कर रहे हो उनको, तो ही बिकम्स ओबलाइज टू यू, ही बिकम्स ग्रेटफुल टू यू कि मेरे मिशन में ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब भटके हुए लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, सबको ये लोग उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, छोटे मोटे तरीके से, कोई बड़ा तरीके जरूरत नहीं, बड़ा योजना नहीं, जस्ट डू समथिंग लिटिल बिट हियर एंड देयर, जस्ट है हरे कृष्णा ऑल्सो वी आर कनेक्टिंग पीपल टू गॉड, प्रेम से करो, हरे कृष्णा। वन क्वेश्चन एनीबडी हैज गॉट, एनीबडी हैज वन क्वेश्चन, हाँ सर प्रश्न है कोई, आप लोग सब व्रत कर रहे हैं, देखो कोई भी नहीं बोल रहे हाँ या ना, सबको व्रत करना चाहिए, सबको, थैंक यू वेरी मच।